नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के व्यक्ति ही अनुसूचित जाति का दर्जा पाने के हकदार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार बेटियों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। कैबिनेट मंत्री रेखार्य ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों को 3 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि जारी की और बागेश्वर में हमारी धरोहर विषय पर 2 दिवसीय संगोष्ठी शुरू। पाठ्यक्रम में शामिल होंगी लोक भाषाएं। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अनुयायी ही अनुसूचित जाति का दर्जा पाने के पात्र हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी अन्य धर्म जैसे कि ईसाई धर्म में धर्मांतरण करने से अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। एक रिपोर्ट।
सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि एक बार कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है और सक्रिय रूप से उस धर्म का पालन करता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने फैसला सुनाया कि ईसाई धर्म अपनाने वाला दलित व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। न्यायालय ने कहा कि यह स्थिति संविधान अनुसूचित जाति आदि 1950 के तहत स्पष्ट रूप से स्थापित है। न्यायालय के अनुसार 1950 के आदेश के खंड 3 के तहत लगाया गया प्रतिबंध बाध्यकारी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार बेटियों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नंदा गौरा योजना, गौरा देवी कन्याधन योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना और पोषाहार योजना सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बेटियों के जन्म से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक हर स्तर पर उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री आज देहरादून स्थित सनातन धर्म मंदिर परिसर में आयोजित सामूहिक कन्या पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 1100 कन्याओं के पूजन को अत्यंत सौभाग्यपूर्ण बताते हुए आयोजन समिति की सराहना की। उन्होंने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे हर बेटी की रक्षा, शिक्षा और प्रगति का संकल्प लें, जिससे कन्या पूजन की भावना वास्तविक रूप से सार्थक हो सके।
मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आज के इस अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम हर बेटी की रक्षा करेंगे, हर बेटी को आगे बढ़ने का अवसर देंगे, हर बेटी को हम शिक्षा देंगे, हर बेटी को पढ़ाएंगे और हर बेटी को हर प्रकार से उसकी सुरक्षा भी करेंगे, उसका सशक्तिकरण भी करेंगे और हर क्षेत्र में उसका प्रोत्साहन भी करेंगे। तो जब हम ये संकल्प आज यहां से लेकर जाएंगे तो सच में तभी हमारा ये कन्या पूजन वास्तव में सार्थक सिद्ध होगा।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हरिद्वार में आज परिवहन विभाग की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया। चारधाम यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य के प्रवेश द्वार गुरुकुल नारसन में एक आधुनिक सूचना केंद्र स्थापित किया जाएगा, जहां वाहन चालकों के दस्तावेजों की जांच के साथ ही ग्रीन कार्ड की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही श्रद्धालुओं को यात्रा संबंधी जानकारी भी जाएगी, जिससे वे अपनी यात्रा को सुगमता से कर सकेंगे।
यात्रियों को सुविधा मिले, बाहर यात्रियों को दिक्कत ना हो, इसलिए हम सूचना केंद्र एक बॉर्डर पर ही बना रहे हैं। जहां हमारा प्रवेश द्वार है गुरुकुल नारसन में, वहां पर एक सूचना केंद्र बनेगा जिसमें एआरटी का ऑफिस खुलेगा और वहां पर जो है ग्रीन कार्ड जो बनना है सभी डॉक्यूमेंट चेक करके वहीं पर लोगों को मिल जाए, जिससे कि आगे जगह जगह पर डॉक्यूमेंट चेक न कराने पड़े, हर चीज के लिए यात्रियों को परेशान न किया जाए। तो बॉर्डर पर ही हम लोग एक सूचना केंद्र बनाएंगे, वहां टॉयलेट फैसिलिटीज देंगे, वहां पर हम लोग कैंटीन बनाएंगे, वहां पर उत्तराखंड का म्यूजियम बनेगा, वहां पर लोगों के लिए कैंटीन फैसिलिटी होगी। तो वहीं पर यात्रियों के लिए सभी सुविधा मिल जाएगी और सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। चारधाम यात्रा में कहाँ जाना है आपको, रजिस्ट्रेशन आपका होना है, होटल्स कहाँ मिलेंगे आपको, या कहीं आपदा तो नहीं आई, कहीं पर जाने से रोक तो नहीं है, सभी चीजों की जानकारी आपको बॉर्डर पर ही मिल जाएगी।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आज मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों को 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से जारी की। उन्होंने बताया कि फरवरी में 5057 लाभार्थियों को 1,51,00,000 रुपए से अधिक धनराशि जारी की गई है, जबकि मार्च महीने के लिए 5025 लाभार्थियों को 1,50,00,000 रुपए से अधिक की धनराशि जारी की गई है।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत आज लगभग 5057 बच्चों को उनके वात्सल्य का पैसा यानी कि 3,000 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा स्वीकृत किया गया है। आज वो उनके खातों में डीबीटी की गई है। लगभग यह धनराशि 3,24,00,000 के करीब यह धनराशि उनके खातों में डीबीटी की है। निश्चित रूप से इस धनराशि के प्राप्त होने के साथ में हमारे वात्सल्य के बच्चों को बहुत मदद हो जाती है और आर्थिक बहुत सहयोग हो जाता है।
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में आज हमारी धरोहर विषय पर 2 दिवसीय विचार मंथन संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विभिन्न जिलों से आए शिक्षाविदों, भाषा विशेषज्ञों और साहित्यकारों ने अपने विचार साझा किए। मुख्य वक्ता और लोक भाषा विशेषज्ञ प्रोफेसर डीडी पोखरिया ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत लोक भाषाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना समय की आवश्यकता है।
हमारे पूरे राज्य उत्तराखंड के लिए विभिन्न लोक भाषाओं जैसे कुमाऊनी है, गढ़वाली है, जौनसारी है, रंग है, इनको लेकर किस तरह के पाठ्यक्रम बनाए जाएं, तो इस संस्थान के जो भी विशेषज्ञ यहाँ पर आए हुए हैं अलग अलग भाषाओं के, तो उन पर मंथन चलने वाला है और यह मंथन क्रियात्मक रूप से सामने आएगा।
भाषा उत्कृष्टता केंद्र के प्रभारी डॉक्टर कुंदन सिंह रावत ने बताया कि लोक भाषाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए इस तरह की गोष्ठी जरूरी और प्रेरणादायक भी है।
पाठ्यक्रम में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यालय पाठ्यक्रम में लोक भाषाओं को किस रूप में पढ़ाया जाए, किस रूप में भाषाओं के माध्यम से शिक्षण व्यवस्थाएं को संचालित किया जाए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 30% स्थानीय पाठ्यक्रम को सम्मिलित करने की बात आ रही है उसमें किस तरह से सुझाव आएंगे विद्वानों के, उसके लिए हमने यहाँ पर एक गोष्ठी आयोजित की है। तो हम इस पाठ्यक्रम निर्धारण की क्या प्रक्रिया होगी इसके सुझावों को संकलित करके SCERT को भेजेंगे।
आज विश्व तपेदिक दिवस है। इस अवसर पर टिहरी जिले के विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में तपेदिक यानी टीबी मुक्त गांवों के प्रधानों को सम्मानित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने बताया कि जिले में 337 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि जिले की 398 ग्राम पंचायतों में 100 दिन तक रोस्टर के तहत टीबी मुक्त अभियान चलाया जाएगा।
टीबी मुक्त अभियान जो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है उसमें टिहरी में भी इंटेंसिवली इस कैंपेन को चलाया जा रहा है। तो पिछले कुछ वर्षों से जो कैंपेन चल रहा था उसमें आज हमने ऐसा पाया कि 337 हमारी पूरी ग्राम पंचायत जो टिहरी में है 1049 में से वो टीबी मुक्त हो चुकी है। तो हमने उन प्रधानों को, उन जनप्रतिनिधियों को प्रशस्ति पत्र और ये सम्मान दिया है जिनके यहाँ पिछले 1 वर्ष से टीबी मुक्त रहे हैं ग्राम पंचायत, या 2 वर्ष से या 3 वर्ष से। इसके अलावा 24 मार्च को जो टीबी उन्मूलन का जो दिन होता है उस दिन भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष में 100 दिन का कैंपेन लॉन्च किया है। तो हमारे यहाँ 398 कुल ऐसी ग्राम पंचायत हैं जिनमें ये 100 दिन का अभियान चलाया जाएगा।
विश्व क्षय रोग दिवस पर हरिद्वार और चंपावत सहित राज्य के विभिन्न जिलों में भी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के व्यक्ति ही अनुसूचित जाति का दर्जा पाने के हकदार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा सरकार बेटियों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों को 3 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की और बागेश्वर में हमारी धरोहर विषय पर 2 दिवसीय संगोष्ठी शुरू। पाठ्यक्रम में शामिल होंगी लोक भाषाएं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।